Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmanand Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
आप एक एक ग्रंथ बड़े बड़े विद्वान महाराज श्री जी के जीवन पर बैठ करके आनंद लेते थे. अब वो आनंद महाराज श्री जी के सिर्फ ग्रंथों पर मिल रहा है. बाकी ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता आप लोगों की दृष्टि में ऐसा कोई महापुरुष हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी दृष्टि में मैं इतना जानता हूं कि इतने अच्छे महापुरुष का दर्शन अब मुश्किल. केवल उनकी वाणी का ही दर्शन है और वो वाणी ग्रंथों पर मिल रही है और उसी वाणी के द्वारा हम अपने जीवन को चला सकते हैं. दूसरा कोई उपाय नहीं है, लेकिन हम अपने आराध्य के चरणों में बैठ करके निवेदन कर सकते हैं कि हे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, हमको भी आप उस शक्ति दे, उस वृद्धि दे, हमको भी वो सद्बुद्धि दे, ताकि हम अपने जीवन को ठीक तरीके से चला सके. क्योंकि अधिक समय तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि महाराज श्री जी यहां विराजमान है और महाराज जी की परंपरा थी कि महाराज जी के सामने भी बड़े बड़े संत लोग आते थे तो महाराज जी एकदम मौन हो जाते थे और सुनते थे, आनंद लेते थे. तो वो सुनने में जो आनंद है वो ज्यादा बोलने में आनंद नहीं है. तो इतना ही कह करके परम पूज महाराज श्री जी के श्री चरणारविंदो में अपने वाणी को राम करता हूं और महाराज श्री जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन ऐसी करते रहे. ऐसे संतों के दर्शन से और ऐसे संतों के मुखारविंद से जो हमको श्रवण करने को मिलेगा वो भी महाराज जी की कृपा ही होगी, क्योंकि महापुरुष की कृपा जब होती है तभी ऐसे संतों का दर्शन मिलता है. तो यही महाराज जी की कृपा है कि हम लोग अपने जीवन में ऐसे संतों का दर्शन करते रहे और महाराज श्री जी के जो शब्दावली है, जो उनके ग्रंथ हैं, जो उनके अनेक अनेक संस्मरण हैं, यही प्रेमपुरी में बहुत पहले प्रवचन कर रहे थे और पूज्य पंडित रामकिंकर जी महाराज श्री जी का वहां पर दर्शन हुआ जहां पर महाराज श्री जी नित्य निवास करते थे. तो पूज्य पंडित जी महाराज ने महाराज श्री जी से एक बात बोली, बोले महाराज श्री जी बहुत दिन हो गए मेरे को पाठ करते करते, कुछ आप ऐसी कृपा कर दीजिए ताकि मुझे श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन हो जाए. तो महाराज श्री जी बड़े मौज में, बड़े आनंद में थे. तो अपने ऐसे बिस्तर पर बैठे थे, पूज पंडित रामकिंकर जी महाराज से महाराज श्री जी ने कहा कि जरा देखो खिड़की तरफ. तो महाराज श्री जी ने जो कहा कि खिड़की तरफ देखो, तो वहां पर एक बंदर और अपने हाथ में सेव लिए और मुख पर खा रहा है. बोले बस इसी का दर्शन करके मान लो यही श्री हनुमान जी महाराज. तो ऐसे महाराज श्री जी का जो दर्शन जिसको भी हुआ है और जिसने भी किया है तो भगवत दर्शन प्राप्त हो चुके और उनके बस जीवन पर बस एक ही भाव है कि सच्चे मन से आराधक की आराधना तभी सच्ची है जो अपने आराध्य के चरणों में समर्पण होकर के करे, जैसे श्री हनुमान जी महाराज. इन्हीं शब्दों के साथ परम पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में प्रणाम. हरिओम तत्सत. हरिओम तत्सत.
बहुत सुंदर भाव हमारे प्रीतमानंद जी ने रखे. महाराष्ट्र से भी किसी ने पूछा कि आराधना क्या होती है, तो महाराज जी ने कहा कि साधना में जीवन ही आराधना है. एक पंक्ति में ये जीवन जो है तुम्हारा, ये सरलता से सहजता से निकल जाए, यही साधना है, यही आराधना है. फिर नहीं माना वो, कहा कि और बताइए. तो कहा देखो तीन चीज है तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर मन है, तुम बोलते हो तो वाणी है और शरीर है. ये तो स्पष्ट है. तो कहा है, तो कहा कि महाराज जी ने कहा कि मन से राग द्वेष निकाल दो, तो इसकी विधि यह है कि भगवान को बिठाओ. वाणी से मधुर बोलना है तो भगवान का भजन करो और शरीर को सदाचार में और सेवा में लगा दो इस समष्टि की, तो ये जीवन आराधना में हो जाएगा। ऐसे महाराज जी ने हनुमान जी की चर्चा कर रहे थे हमारे पितमान जी महाराज, तो महाराज जी की वो वेदांत परक बहुत बढ़िया स्तुति है, मैं आप लोगों को सुनाऊं तो कहें तो आज्ञा हो तो। देह पात्रम जीवनम स्नेहधारा वर्ति ही प्राणा ज्योतिरात्मेश जीव वाचो ध्वानम चापलम नृत्यमित्थम स्वारार्तिक्यम मारतेश चिंतेयहम। ये हमारा जो शरीर है वो दिया है मिट्टी का, और इसमें जो प्राण है जो जीवन है वो बाती है, जल रही है। जो मैं बोल रहा हूं वो घंटी है, और जो मैं ये चल फिर रहा हूं वो दिया हिल रही है। तो हे हनुमान जी, ये मेरा पूरा का पूरा जीवन दिया में है, और मैं इसको आरती जैसे आपको समर्पित करता हूं, ऐसे भाव हैं उसके। ये 76 श्लोक महाराज जी ने हनुमान जी की स्तुति में लिखे, और सारे के सारे वेदांत वो परक हैं। वेदांत की स्तुति हनुमान जी की वेदांत से वो अनूठा ग्रंथ है। विद्यानिवास मिश्र ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है कि हमने ऐसा ग्रंथ हनुमान जी की स्तुति में कभी देखा नहीं है। तो वो 76 और मजे की बात की 76 श्लोक और 76 वर्ष की महाराज श्री की आयु वय। तो और हमारे महात्मा तो बहुत आनंद लेते थे कि शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी महाराज की उम्र में भी चौका लगा 8 चौके 32 और महाराज जी का भी 19 चौके 76, दोनों लोगों ने चौका लगाया ऐसे विनोद करते थे। 19 में मार्केश था महाराज श्री के, आप लोग जीवन से परिचित हैं, तो 19 का उनका भी जीवन और हमारे तो एक शाम में वो है। और हमको तो हमारे रोए खड़े हो जाते हैं जब इन महापुरुषों को हम देखते हैं, शंकरम शंकराचार्यम, हम खाली बोलते हैं ये किस परंपरा से हैं, मतलब कितना गौरव होता है। मेरा तो हृदय ऐसा निकलता है कि बाहर आ जाएगा आपके दर्शन देख के, आप लोगों के दर्शन, क्या परंपरा रही है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम, कौन सी विद्या का वाहक आप लोग हैं और साक्षात दर्शन करते हैं। भगवान आके क्या करेंगे, 2 मिनट आएंगे 3 मिनट में चले जाएंगे, ये भगवान चलते फिरते हम लोगों के बीच में बैठे हैं और हम लोग लाभ नहीं ले रहे, ये हम लोगों का हतभाग्य है। तो मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और गिरीश जी से मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे आचार्य जी का परिचय दें। आप यहां पर भागवत करने जा रहे हैं।
हरिओम। समय की मर्यादा देखते हुए परिचय में इतना ही है कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रेमपुर जी महाराज का पूर्व शरीर हमारे सौराष्ट्र हित का, आप सौराष्ट्र के हैं, हमारे आनंदवन आश्रम के महंत जी रहे वह भी हमारे सौराष्ट्र के ही थे। तो सौराष्ट्र की एक खुशबू है और उस खुशबू का आनंद आज सायं 3:30 से हमें प्राप्त होगा। इनकी जो यहां विराजमान है भाणभट जी, जो मोरबी के हैं सौराष्ट्र के, और गुजराती में उनका जो पूरा श्रीमद भगवत ज्ञान यज्ञ उनका आज से प्रारंभ होगा भागवत का। आप सभी से निवेदन है कि 3:30 से यह गुजराती में बहुत ही सुंदर प्रवचन धारा प्रेमपुरी को प्राप्त हो रही है, तो उसका हम आनंद ले। अभी हम उनके मुखारविंद से कुछ सुंदर शब्द हमें सुनेंगे। 9:30-10 जब भी यह आराधन महोत्सव की पूर्णावती होगी, तत्पश्चात बाबुलनाथ वो पोथी का जो हमेशा हम लोग करते हैं वो पोथी लाने के लिए सब लोग जाएंगे, जो बैठना चाहे जो आना चाहे वो आनंद ले सकते हैं। और 3:30 से इनके शुभमुख से यह भागवत ज्ञान यज्ञ आज से प्रारंभ होगा 25 तारीख तक। मैं विनती करूंगा पूज्य भाणभट जी आचार्य जी से कि आप थोड़ा आशीर्वाद इस प्रसंग में दें। हरिओम।
कृष्णम वंदे जगद्गुरुम श्रीनाथ शरणम मम, उपस्थित संतों को सब सज्जनों को प्रणाम। भारतवर्ष के अध्यात्म का इतिहास देखा जाए तो एक समय ऐसा आता है कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की संगति बिठाना मुश्किल हो गया था, एक विरोध पैदा हो गया था। वास्तव में विरोध नहीं है लेकिन विरोध खड़ा हो गया, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग। एक ग्रंथ ऐसा हमारे पास आया कि उन विरोध को मिटाकर संगति बिठाई गई। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग की ऐसी संगति श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत के हर अध्याय में, हर पन्ने पे, हर श्लोक पे आपको मिलेगा ज्ञान की बात, भक्ति की बात ऐसी इस तरह रची गई है कि आपको मालूम न पड़े कि दोनों अलग अलग है। दृष्टांत एतावान लोकेस्मिन् पुंस स्वार्थ परम स्मृतः एकांत भक्तिर गोविंदे, एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। देखिए एक ही पंक्ति में एकांत भक्तिर गोविंदे, उसका मतलब क्या? सर्वत्र तदीक्षणम्, ये उपनिषद की बात हुई। सर्वम खलिदुम ब्रह्म तज्जड़ा नित्य, वही बात हो गई। तो एक एक श्लोक में ज्ञान की बात भी होगी, भक्ति की बात भी होगी। एक विरल महाग्रंथ है जहां ज्ञान भक्ति योग की संगति बिठाई गई है। लेकिन श्रीमद् भागवत कोई सरल ग्रंथ तो नहीं है, भाषा की दृष्टि से भी सरल नहीं है और अर्थ की दृष्टि भी सरल नहीं है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, श्रीमद् भागवत में विद्वानों की परीक्षा हो जाती है। तो ज्ञान और भक्ति की संगति, सामान्य जन समाज तक पहुंचाने का सबसे बड़ा काम कोई महापुरुष ने किया तो हमारे महाराज श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती ने किया है। ज्ञान भक्ति की संगति, ज्ञान श्रीमद् भागवत की जो बात है हम तक पहुंचाई, हम तक सामान्य जन समाज तक ज्ञान भक्ति की संगति उन्होंने बिठाई है। आज से 35 साल पहले मैं लोनावाला के केवलधाम योगाश्रम में रहता था, तो पेपर में पढ़ा कि स्वामी जी महाराज की श्रीमद् भागवत की 15 दिन की कथा यहां हो रही है। मुझे तो मालूम नहीं था कि ब्रह्मपुरी आश्रम क्या है, लेकिन फोन नंबर था उस पर पेपर में। मैंने फोन किया कि मुझे कथा सुननी है, तो यहां देशवाला साहब थे, सीनियर देशवाला, उनके कहा कि आ जाओ खुशी से आओ। मैं यहां आया 35 साल पहले और इसी संस्था पे सबसे पहले मैंने स्वामी जी महाराज के मुख से 15 दिन की श्रीमद् भागवत कथा सुनी। बाद में विपुल में हमेशा मैं जाता था उनको मिलने के लिए, बड़े प्यार से मेरा स्वागत करते थे, सत्संग भी होता था। लोनावाला में वो कई बार आते थे, तुलसी साधना कुटीर लोनावाला में वहां कई बार आते थे, हफ्ता भर रहते थे, तब भी मैं उनको मिला करता था। बाद में मैं एक बार वृंदावन गया तो उनके आश्रम में, आनंद घन आश्रम, उड़िया बाबा जी महाराज के बाजू में उनका आश्रम है, वहीं ठहरा। मुझे प्रेम से रखते थे, रखो रहो रहो। तो उनके पास से मैं सबसे बड़ी चीज सीखा, भक्ति ज्ञान में कोई विरोध नहीं है, इतना ही कोई द्वेष ही नहीं है। भक्ति कहो ज्ञान हो एक ही बात है, इतनी गहराई से और इतनी तर्कबद्ध दृष्टि से उन्होंने बताई है और मेरे मन में वो बात उतर गई कि भक्ति कहो ज्ञान कहो एक ही बात है, कोई भिन्नता नहीं है। हां बहिरंग दृष्टि से लगता है, लेकिन कृष्ण की पूजा, श्री कृष्ण की पूजा करो और अद्वैत में जाओ, कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं। ये बात इस युग में अगर किसी ने बताई है तो स्वामी जी महाराज ने बताई, ऐसा मेरा एक हृदय की भावना ऐसी मेरी है। मैंने उनको कई बार सत्संग किया है, कई प्रश्न पूछे है, उन्होंने ठीक से उत्तर दिया है। हमारे आश्रम की लाइब्रेरी में स्वामी जी महाराज के सब पुस्तकों का पूरा सेट रखा गया है, स्वामी जी के महाराज, और मैं श्रीमद् भागवत की कथा शायद उनसे सीखा हूं। उनके किताबें पढ़ता हूं तब मालूम पड़ता है क्या करना है। ये गोपी गीत है, ये पंचगीत है, क्या है, कैसे समझे के बनाना है। तो स्वामी जी महाराज की जो पद्धति थी श्रीमद् भागवत की कथा में, और कोई बातें नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, आजकल फैशन शुरू हो गई है, श्रीमद् भागवत की कथा कम दूसरी बातें बहुत, रामायण की बात कम दूसरी बातें ज्यादा, ऐसा शुरू हुआ है। स्वामी जी ऐसा कभी नहीं करते, विषयांतर नहीं करते, श्रीमद् भागवत तो श्रीमद् भागवत। उनसे मैं सिखा होगा श्रीमद् भागवत की कथा में और कोई बातें नहीं बनाना है। हाँ कथा को सरल बनाने के लिए आप दृष्टांत दे सकते हैं, वो ठीक बात है, कोटेशन दे सकते हैं, वो ठीक बात है, लेकिन भागवत को इधर रख के और इधर उधर की बातें करना, स्वामी जी ऐसा कभी नहीं करते थे। इससे मैंने उनसे सीख लिया हूं, श्रीमद् भागवत की कथा में केवल श्रीमद् भागवत और मूल कथा को छोड़ के कहीं दूर नहीं जाना है, विषयांतर नहीं करना है और महत्वपूर्ण कोई बात को छोड़ना नहीं है। ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया नहीं, साफ सप्ताह में करो या 15 दिन में करो, श्रीमद् भागवत के कोई महत्वपूर्ण आख्यान को छोड़ने नहीं चाहिए। ये बात भी मैं उनसे सीखा हूं, शायद मैं उनके पीछे चलने की मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं उनके पद पर पद रख के श्रीमद् भागवत कथा करता हूं। आज इस अवसर में उस महापुरुष को बहुत प्यार से प्रणाम करता हूं, सबको धन्यवाद।
अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषक परम। तीनों धाराओं का पोषण करने वाला भागवत और ऐसे भागवताचार्य सबको हम प्रणाम करते हैं। हमारे मध्य सर्वेश चैतन्य जी महाराज विराजमान हैं। मैं आपसे भी विनती करूंगा, उसके पहले गिरीश भाई को मैं महाराज जी की एक कविता सुनाना चाहता, संस्कृत में तो सुना दिया महाराज जी, पर हिंदी का भी बहुत बढ़िया महाराज जी का कवित्व था। तो एक है, प्रीतमानंद जी हैं, आप सब लोग हैं, आप भी हैं। महाराज जी का है, निर्देश भी है, साथ साथ निर्देश है और एक रस भी है। बनना कवि पर कभी दुख के गीत न गाना, बनना कवि पर कभी दुख के गीत न गाना, टीका करके कभी न मन में व्यथा बुलाना। ये जो टीका टिप्पणी कर देते हैं हम दूसरे पे, उस पे मतलब कभी कोई टीका मत करना किसी पे कि तुम ऐसे हो तुम वो हो। टीका करके कभी न मन में व्यथा बुलाना, रहो हमेशा सरस प्रीति की रीति बढ़ाओ, रहो हमेशा सरस प्रीति की रीति बढ़ाओ, तन मन धन के बिना प्रेम के फूल चढ़ाओ। दिल को कड़वा मत करो, रखो सदा रस घोल, सुनकर सब सुख में सने, बोलो ऐसे बोल। ये आराधना का एक स्वरूप महाराज श्री का, हम सर्वेश चैतन्य जी की ओजस्वी वाणी।
ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में कुछ सह नमन। ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज जी के भी चरणों में कुछ सह नमन। इसे सब महापुरुषों का नाम लेते हैं उनके परिचय के लिए, लेकिन उनका परिचय हम क्या दे सकते हैं। वो तो स्वयं ऐसे दीप हैं, दीप का एक ऐसे सूर्य हैं जिनकी आभा पूरे विश्व में प्रकाशित हो रही है। ऐसे ही इस सभा के अध्यक्ष गुरुदेव जी महाराज हैं, जिस आश्रम के विषय में आप जानते ही हैं, ज्ञान की धारा, गंगा रूपी ज्ञान की धारा हरिद्वार से निकल करके कहां तक जा रही है, गंगा सागर तक जा रही है। प्रेमपुरी नहीं भाई, उस गंगा का एक छीटा होता ना, जब पानी बहता ना एक छीटा है, तो हमारे जैसे छीटे आ जाते हैं और बंबई में भी आ जाते हैं। तो हम लोग तो उस एक विशाल धारा के एक क्या है, जिसे आग जलती है, विशाल आग होवे तो उसकी एक चिंगारी होती है, तो हम लोग तो एक छोटी मोटी क्या है चिंगारियां हैं, यत्र तत्र जा करके प्रकाशित कर देते हैं थोड़े से क्षेत्र को, लेकिन वो धारा तो विशाल धारा है। महाराज जी, स्वामी जी महाराज जो राजस्थान प्रसिद्ध है वीर भूमि नहीं है, उस वीर की भूमि में ज्ञान का रस बरसा करके देखो, इसमें सबसे ज्यादा बाढ़ आती है तो कहां आने लगी है, राजस्थान में आने लगी है। तो पहले राजस्थान सूखा क्षेत्र था, अब राजस्थान क्या हो गया, ते संतों का ही प्रताप है, तप है। तो महाराज जी के चरणों में मेरा कुछ सह नमन। स्वामी प्रीतमानंद जी महाराज जिनकी आपने भक्तिमयी वाणी का श्रवण किया, पंडित सोमदत्त जी, विश्वनाथ शास्त्री, अन्य भक्तिमती माताओं और सज्जनों, हम लोग अभी एक दृष्टांत दिया पंडित सोमदत्त जी ने, बहुत बढ़िया, सिंगदाना का है ना, जब उसको उबालते हैं तो भक्ति रूपी आंच में अपने अंतःकरण कितना पका लो कि संसार का बीज अंकुरित होने ही ना पावे। लेकिन हम लोग बड़े चालाक हैं, कभी आप लोगों ने भूना होगा कोई चीज देखा होगा कि कोई चीज जब डालते हैं ना उस भट्टी में भूनने के लिए, तो कोई बीज फुदक करके बाहर कूद पड़ता है। देखा नहीं देखा है? तो हम लोग वही बीज हैं, भक्ति रूपी आंच में जाते तो हैं, लेकिन क्या करते हैं, जरा सा ज्वाला मिली, जरा सा थोड़ी सी हमारी मैं पे चोट आई तो उछल करके बाहर भाग जाते हैं, कहां, संसार में। तो फिर से जो भूंजने वाला होता है ना, वो क्या करता है, उसको बिन करके चुप करके फिर से उसी में डाल देता है, तल देता है। क्यों भाई, यही होता ना भाई। तो ऐसे हम लोग भी, ध्यान देना, महापुरुषों का चाहे निर्वाण महोत्सव मनाए, चाहे जन्म महोत्सव मनावे, और हर महापुरुषों का कोई भी बार बार जो फुदक करके बाहर चले जाते हैं ना, तो अपने चित्त की वृत्ति को संसार में न ले जाकर के बीच बीच में झोंकते रहो, उस भट्टी में, संतों की भट्टी में अपने आप को डालते रहो। इसलिए हम बीच बीच में महोत्सव मनाते रहते हैं। अभी आपने चार पांच दिन पहले, दो दिन पहले स्वामी जी त्यागमूर्ति जी महाराज का आपने लाभ पंचमी जन्म महोत्सव मनाया, आज महाराज जी का आराधन, शायद निर्वाण चाहिए ना, आराधन महोत्सव है। इसके बाद अभी 7-8 तारीख को स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज का निर्वाण महोत्सव मनाएंगे। बीच बीच में कभी संन्यास जयंती भी फरवरी में शायद मैं रहूंगा, उसी समय है कि नहीं है, 18 उस समय मैं रहूंगा, संन्यास जयंती मनाते हैं, या बीच बीच में कभी न कभी कोई न कोई हम एक संतों का किसी न किसी रूप में हम जोड़े रहे। हमारे चित्त की वृत्ति जो बीच बीच में हम संसार में घुस जाते हैं ना, वहां से निकालने के साधन है। इसलिए हमारे आध्यात्म की परंपरा में, सनातन की परंपरा में, कभी सावन, कभी कार्तिक, कभी नवरात्रि, कभी कोई, इतने ऐसा नहीं कि शंकर जी अलग हैं, भगवान विष्णु अलग हैं, देवी जी अलग हैं, ये अलग अलग नहीं महात्मा, जान लेना भगवान सारे क्या हैं, एक ही सत्ता है। वही सत्ता जगत की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा रूप बन जाते हैं, वही सत्ता जगत के संचालन के लिए क्या बन जाते हैं, विष्णु रूप, जगत के संहार के लिए वही क्या बन जाते हैं, रुद्र रूप बन जाते हैं, वही देवी हैं, वही सब कुछ है। ऐसा ही अभी एक स्वामी प्रीतमानंद जी बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन थोड़ा सा हम थोड़ा असहमत हो गए। क्या बताया कि महाराज जी से जब रामकिंकर जी ने कहा हनुमान जी का दर्शन, या कहा ना, तो कहा बंदर के रूप में क्या कर लो, हनुमान जी का दर्शन कर लो, हनुमान जी हैं। तो मैं कहता संतों के रूप में महाराज जी आते हैं, किन्हीं किन्हीं रूपों में सारे अवतार। महाराज जी कोई शरीर थोड़े थे, आप बताओ, महाराज जी का शरीर के साथ थोड़े कोई संबंध था। यदि व्यक्ति ज्ञानवान है तो उसका तो जैसे इस शरीर के साथ संबंध होता है, उससे संसार के सारे सजीवों के साथ संबंध होता है। अष्टावक्र गीता का एक श्लोक होता है, यथा प्रकाश्याम देह मेनम, जैसे मैं इस देह को प्रकाशित करता हूं, ते देह मेरा है, ऐसे संसार के सारे शरीरों को मैं ही प्रकाशित करता हूं, तो संसार के सारे शरीर किसके हैं, मेरे ही हैं। अथवा ये देह मेरा नहीं है तो संसार का कोई भी देह मेरा है ही नहीं, तो महाराज जी ही संसार के चर अचर रूप में है, उनकी सत्ता। ऐसा नहीं महाराज जी पहले थे अब नहीं है, आगे नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। महाराज जी पहले भी थे, उस शरीर के पहले भी उनकी सत्ता थी, आज भी सत्ता है, और आगे भी उनकी सत्ता हमेशा रहेगी। हमारी दृष्टि चाहिए उस वस्तु को देखने के लिए। फिर भी महाराज जी का हम लोग कहीं न कहीं बीच बीच में उत्सव मनाने का प्रयोजन क्या है, हम क्यों मनाते हैं, आवश्यकता क्या पड़ गई। तो देखो, आप लोग घर से आए होंगे, एक शीशा तो देख के आए होंगे, शीशा देखा था, नहीं देखा था, और शीशे देखते वक्त थोड़ा सा बाल इधर हो गया, या कोई बिंदी हो गई, या कुछ हो गया, तो उसको क्या करके आए थे, ठीक करके आए थे। तो हम भी संसार रूपी यात्रा करते हैं, तो कहीं न कहीं संसार के विषयों के कहीं न कहीं कुछ न कुछ क्या पड़ जाते हैं, छींटे कहीं न कहीं लग ही जाते हैं, पड़ जाते हैं। और वो छींटे जो पड़ते हैं, तो जब महापुरुषों का हम जीवन चरित्र किसी भी बहाने, पहले मैंने बताया, बहाना कोई भी हो, चाहे संन्यास उत्सव हो, चाहे आराधन महोत्सव हो, चाहे जन्म महोत्सव हो, या गृह त्याग, स्वामी त्याग मूर्ति जी महाराज का गृह त्याग दिवस भी मनाते हैं होली के समय, कोई भी उत्सव हो, उन अवसरों पे उन महापुरुषों की जीवन की थोड़ी झलक, उनके जीवन का एक तरीका, उनके चिंतन, उनका दर्शन यदि हम श्रवण कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो अपने भीतर जो दोष है ना, उन दोषों का पता चल जाता है। और जैसे उन दोषों का पता चल जाता है, हम उस कमी को क्या कर लेते हैं, अपने से दूर कर लेते हैं। और दूर करने के बाद क्या करें, एकदम निश्चिंत हो जाएं? नहीं नहीं, बीच बीच में देखते रहना चाहिए। आप भी बीच बीच में दर्पण देखते हो, एक दो बार तो देख लेते हो गया, तो बीच बीच में दर्पण देखते रहना चाहिए। अपने महापुरुषों के चरित्र से, महापुरुषों के जीवन के साथ रह करके हम अपने जीवन को देखते रहें, अपने जीवन को हम देखते रहें कि हमारे भीतर कोई दोष तो न आवे। जैसे वही बता रहे थे, महाराज जी का शरीर इतना वो था, मतलब लगभग लगभग लास्ट के समय में, अंतिम समय में इतना रोग था, लेकिन फिर भी महाराज जी के चित्त में वही प्रसन्नता। और हम लोगों के जीवन में जरा सा दुख आता है तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं, हाय हाय करना शुरू कर देते हैं। तो कम से कम महापुरुषों के जीवन में से उस असंगता को सीख करके, उस असंगता को सीख करके अपने जीवन में भी ऐसी असंगता लावे, ऐसे इन महोत्सवों का तात्पर्य है, इन उत्सवों का तात्पर्य है। जब तक हम उनके चरित्र से, उनके जीवन से, अपने जीवन का वो क्या सामंजस्य तारतम्य बैठा करके अपने जीवन का परिष्कार नहीं करेंगे, तो आप उत्सव मनाओगे, चले जाओगे, इससे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए उनके जीवन में आकर के, उनके जीवन में घुस करके अपने जीवन को उनके मय बना लो। तो जो महाराज जी की स्थिति थी या जो ब्रह्म की स्थिति है, वही स्थिति किसकी हो जाएगी, हम सबकी हो जाएगी। और हम सबको यही बनना है, क्योंकि इसके बिना हमारे जीवन की मुक्ति नहीं है।